मेरे स्नेही मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री 2024 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अभी के करंट अफेयर्स पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। करंट अफेयर्स, शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगा कि देखिए, जब हम करंट अफेयर्स कहते हैं तो इसका संबंध सीधे सीधे टाइम से तो है, यानी कि वे घटनाएं जो अभी हाल की हैं, दो चार पांच दस दिन एक महीने की जो घटनाएं हैं उन्हें हम कहते हैं करंट अफेयर्स। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स रूपी घटनाओं का उत्पादन प्रतिदिन होता रहता है, इतना आप सब जानते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तब फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स रोज इतनी मात्रा में उत्पादित हो रहा है इनमें से कौन कौन हमारे काम की है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन्हें हम छांट लेते हैं कि ये हमारे काम की हैं, फिर उनका हम इस्तेमाल कैसे करें। यानी कि करंट अफेयर्स के सीधे सीधे दो रूप हो जाते हैं। एक है उसका कुक्ड फॉर्म। कुक्ड फॉर्म का मतलब है कि बना बनाया रूप, यानी कि उसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, यदि आपको मालूम है तो आप उसका उत्तर सीधे सीधे दे देंगे। जैसे कि यदि अभी के करंट अफेयर्स के बारे में मैं एक प्रश्न आपसे करूं कि क्या आपने अभी हाल में क्या, मतलब कल या आज में ही मैं कहना चाहूंगा कि एक नाम सुना है INS जटायु। अब आप देखिए कि ये क्या है, सीधी सी बात है कि ये कुक्ड फॉर्म में है। INS जटायु के बारे में अगर आपने पढ़ा है सुना है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। लेकिन जो दूसरे तरह के करंट अफेयर्स होते हैं उनमें आप दोनों रूप देख सकते हैं, एक कुक्ड फॉर्म का यानी कि वो बना बनाया है, लेकिन दूसरा रॉ मटेरियल का, यानी कि वो बना बनाया तो है लेकिन बना बनाया नहीं भी है, वो रॉ मटेरियल की तरह है। जैसे आपको दे दिया जाए गोभी आलू मसाला नमक और कहा जाए कि आप सब्जी बनाइए, तो ये गोभी आलू जो मसाला ही ये सब रॉ मटेरियल है, जो आप उसे कुक्ड करके सब्जी में परिवर्तित कर रहे हैं वो उसका कुक्ड फॉर्म है। हमेशा करंट अफेयर्स को आपको दो रूपों में देखना चाहिए, तभी सही मायने में आप करंट अफेयर्स के साथ जस्टिस कर सकेंगे और खुद की तैयारी के साथ भी जस्टिस कर सकेंगे। आइए अब हम सीधे सीधे बात करते हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हैं और थोड़े बहुत कुक्ड फॉर्म में भी हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासकर जिम कॉर्बेट पार्क को लेकर के एक डिसीजन दिया है। डिसीजन ये दिया है कि बकायदे उसने केंद्र सरकार से कहा है कि जो बफर या जो फ्रिंज क्षेत्र होते हैं, खासकर जो हमारे अभ्यारण्य वगैरह होते हैं उनमें जो ऐसे क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में सफारी कराई जाती है। सफारी का मतलब है सैर सपाटा कराया जाता है, उसके लिए बकायदे समिति बनाए और फिर ये समिति सिफारिश करेगी कि हमारे देश भर के जो टाइगर रिजर्व हैं उन टाइगर रिजर्व में क्या बफर और जो फ्रिंज क्षेत्र हैं उनमें बाघ सफारी की अनुमति दी जाए, और यदि दी जाए तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। ये उन्होंने डिसीजन दिया है। इसके पीछे कारण क्या है, जो कारण वाला हिस्सा है वो जानना आप यूं कह लीजिए कि वो अपने आप में कुक्ड फॉर्म में है, उसमें आप नया कुछ नहीं जोड़ सकते। दरअसल इसके पीछे कारण ये रहा है कि उत्तराखंड में जिम पार्क टाइगर रिजर्व है, तो अब आपका करंट अफेयर्स एक तैयार हो गया, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। इस एरिया में सफारी होती थी। जब कहीं भी आप इस तरह के सफारी जैसी योजनाएं शुरू करते हैं तो वहां कुछ तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वहां पता लगा कि होटल बनने लगेंगे, वहां पता लगा कि रेस्टोरेंट बनने लगेंगे और दूसरी तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। उसके लिए फिर आप पेड़ काटेंगे, अब वहां लोग आना जाना शुरू कर देंगे, तो गाड़ियां दिन भर चल रही हैं उसकी आवाज आ रही है, रात में लाइटें जल रही हैं उसकी आवाज आ रही है, लोगों के हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, लोग खा खा करके चीजें फेंक रहे हैं, तो इससे जो वन्य जीव है वो घबरा जाते हैं, उनका जो नेचुरल व्यवहार है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और ये सब खूब होने लगा है, खासकर जिन राज्यों में इस तरह के अभ्यारण्य हैं उनको इससे आमदनी होती है तो खूब इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के साथ है, दूसरे राज्यों के अभ्यारण्यों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले बकायदे इस तरह की और दूसरी घटनाएं आपको सुनने को मिली थी। मैंने कहा कि अभी दूसरी तरह की घटनाएं सुनने को मिली थी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको इंटरलिंक्ड करके भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो अब देखिए हुआ क्या कि जो जिम कॉर्बेट में जो ये सब कुछ हो रहा था तो बकायदे इसके खिलाफ याचिका दायर की गई और याचिका की सुनवाई के फैसले के रूप में ही यह हमारे सामने आया है। मजेदार बात यह है, इसके साथ ही अब देखिए कि क्या है, घटना एक है लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप प्रशासन में जाने वाले हैं। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर होंगे या उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे तो आपको भी सुनना पड़ सकता है। तो तो एक तो मंत्री जी थे, वन मंत्री, तो जो बेंच है उसने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और जो उस समय वहां के डीएफओ थे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के होंगे, किशन चंद को देखिए क्या कहा है, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियां आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और साथ ही साथ आप जब डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग मतलब जब आप बकायदे केस स्टडी को सॉल्व कर रहे होंगे फोर्थ पेपर में, और यहां तक कि आप प्री एग्जामिनेशन में सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें भी इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये आपको रास्ता बताते हैं कि आपको इस तरीके से सोचना है, क्योंकि इस तरीके से सोचना ही सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो कुछ भी आया और आप सोच रहे हैं तो वो सही हो जाएगा। नेताओं और नौकर शाहू ने सार्वजनिक भरोसे के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया। सार्वजनिक भरोसे का सिद्धांत कुछ रह ही नहीं गया, यानी कि जो पब्लिक है इस स्थिति में आ गई है, न तो वो नेताओं पर भरोसा कर पा रही है और न ही वो नौकरशाहों पर भरोसा कर पा रही है। और इसके बाद की जो टिप्पणी है और जबरदस्त व्यंगात्मक है, हम उनके दुस्साहस पर आश्चर्यचकित हैं। बाप रे बाप, वो इतना दुस्साहस कर लेते हैं, हम तो आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा वो कर कैसे लेते हैं। आप देख रहे हैं क्या व्यंग है। और फिर वो कहते हैं वे खुद को कानून मान बैठे थे, मतलब हम जो कह रहे हैं वही कानून है। तो कहां है कानून का शासन, बताइए तो कहां है कानून का शासन। अगर मंत्री की इच्छा कानून है, अगर ब्यूरोक्रेट्स की एक्टिविटीज कानून है, तो फिर लॉ कहां है, जस्टिस कहां है, न्यायपालिका कहां है। आप देखिए कि तीनों पंक्तियों में कितनी जबरदस्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा दोस्तों इसी के साथ होता है कि क्या आप इससे ही रिलेटेड कुछ दूसरी आसपास की घटनाओं को याद कर पा रहे हैं। जब भी आप तैयारी करें थोड़ा सा रुकिए। न्यूज चैनल्स में आते हैं ना कि 60 मिनट में, एक घंटे में 100 खबरें, उस तरीके से प्लीज आप सिविल सर्विस की तैयारी मत कीजिए, और खासकर करंट अफेयर्स की तो कीजिए ही मत। थोड़े इत्मीनान के साथ तैयारी कीजिए, इसका एक पर्पज है तैयारी करने का। निपटाने का पर्पज नहीं है कि आज के करंट अफेयर्स को निपटाना है। आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इसी तरह का कोई और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, कुछ ही दिनों पहले तो हमारा जो वन संरक्षण कानून था उसमें केंद्र सरकार ने जो 2023 में संशोधन किया था, वो भी मामला कहीं ना कहीं इसी तरह का था कि किस तरह से ये जो फ्रिंज एरिया टाइप की जो जगह होती हैं, कैसे उस पर सरकारी निर्माण और दूसरे कार्य शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये जो निर्माण होते हैं, जो दूसरे कार्य शुरू होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं तो जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं और जो हमारे उद्योगपति या बिजनेस वाले लोग हैं, होटल वाले लोग हैं, उनकी मिली भगत तो होती है, क्योंकि वो जमीन आसानी के साथ तो उन्हें नहीं दी जा सकती कि आप होटल बना लो। तो कहीं ना कहीं तो मन में शंका पैदा करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जानी चाहिए। उसने यही कहा कि नहीं, आपने जो संशोधन किया है 2023 में ये गलत है, पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, व्यापक अर्थ जिसमें वन का दिया हुआ है, आप उसी को मान करके चलिए। और कैसे कितने एरिया इस तरह के हैं, क्या क्या है, क्या क्या सरकारी रिकॉर्ड में वन दिखाए गए हैं, आप उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। आप देख रहे हैं, तो आप उसे याद कीजिए इत्मीनान के साथ, क्योंकि परीक्षा हॉल में तो तभी आपका दिमाग आपका साथ दे सकेगा ना, आपकी जरूरत के हिसाब से फटाफट चीजें उपलब्ध करा सकेगा, नहीं तो कैसे उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो इनफैक्ट तभी आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगी। आइए अब लास्ट में जटायु को देख लेते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दी थी। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारी भारतीय नौसेना ने बकायदे मिनी कॉय द्वीप पर अपना नया बेस शुरू हो गया है और उसका नाम है INS जटायु, मिनी कॉय द्वीप। ये कहां है, याद आया कुछ, आ गया होगा, क्योंकि लक्षद्वीप की चर्चा कुछ ही समय पहले बहुत जोश खोरोश के साथ हुई थी, लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप का ही एक और द्वीप है, उसका नाम है करवत्ती। करवत्ती में पहले से ही INS द्वीप रक्षक नामक नौसैनिक अड्डा काम कर रहा है। देखिए नाम रखा गया इसका जटायु। जटायु की कथा शायद आपको मालूम होगी, रामचरितमानस में ये कथा है कि किस तरह से राम जब सीता का पता लगाने जा रहे थे तो फिर जटायु आता है और वो दिशा बताता है कि कोई इधर लेकर के गया है और उसमें एक महिला रो रही थी, और इसी तरह की घटना आपको याद होगी। यानी कि जो जटायु है वो क्या है, उसने दिशा बताया, वो निगरानी रख रहा था कि कौन किधर से आता है, कौन किधर से जाता है, और उसने सही सूचना राम को दे दी और उससे सीता की खोज हो सकी। यानी कि ये जो जटायु नाम का जो हमारा द्वीप पर जो हमारा बेस है वो निगरानी रखेगा, बहुत मजबूत सुरक्षा निगरानी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है बेसिकली कह लीजिए जटायु। तो इसका खूबसूरत नाम रखा गया है जटायु। तो सीधी सी बात है कि हमारी जो नौसेना है उसकी शक्ति को बढ़ाएगा, उसकी परिचालन शक्ति को बढ़ाएगा। हिंद महासागर में पाक, चीन और मालदीव की जो गतिविधियां होती रहती हैं उन पर नजर रखी जा सकेगी, और साथ ही साथ समुद्री लुटेरे और जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं उन पर भी लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी। तो अब आप देखिए कि हमारी नौसेना की शक्ति भी बढ़ाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी INS जटायु के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल के करंट अफेयर्स के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।